أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پارا نمبر 13 کی امت کے مفہوم سے جو آیات ہیں اس کو دیکھیں گے. سورۃ رعد کی آیت نمبر 30. کذالک ارسلناک فی امہ, جس طرح ہم نے اور پیغمبر بھیجے اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی اس امت میں بھیجا. قد خلت من قبلها امم, جس سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی. یہ تو ہے لیکن بھیجا کیوں؟ اصل یہ چیز ہے, لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک, تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں اس کی جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے. جبکہ وہ لوگ وہم یکفرون بالرحمن, وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں. کیا کہی ان کو؟ قل ہو ربی لا الہ الا ہو, کہہ دیجئے کہ اللہ میرا رب, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت, اور اسی پر میں توکل کرتا ہوں. وإلیہ متاب, اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملی یہ کوئی پہلا تجربہ نہیں تھا اس زمین پہ. ہر دور کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص امت کی طرف بھیجا. دوسری بات یہ کہ نبیوں کی آمد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ جو قرآن یا جو وقت کی کتاب ان پر پڑھی جائے یا ان کے اوپر نازل کی جائے اس کو پڑھ کے سنائیں. تو آج اگر ہم قرآن پاک کو پڑھ کر دوسروں کو سناتے ہیں تو گویا کہ یہ بھی اسی مقصد کا ایک حصہ بن جاتا ہے. تیسری چیز پتہ چلی کہ سارے ہی لوگ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ کتاب سنیں. تو آپ نے ایسے لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ کہ میں تو اپنے رب کو ہی, اللہ کو ہی رب بناؤں گا, اسی پہ توکل ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے آؤں گا. یعنی جہاں لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ بھی ہوں تو بھی آپ نے ان کی خوشی کے لیے اپنی بات کو نہیں بدلنا. پھر سورۃ رعد ہی کی آیت 39 میں یہی لفظ ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے, کیونکہ اسی کے پاس اصل کتاب ہے, تقدیر سے متعلق کتاب ہے. حقیقت ہے کہ انسانوں کی طرح قوموں کی تقدیر بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے تقدیر بنانے اور مٹانے کے بہت سارے طریقے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو اگر آپ مزید غور سے سننا چاہیں تو اس پہ لیکچر موجود ہے, تقدیر کی حقیقت, اور کبھی آئندہ بھی اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے فیصلوں پہ راضی رہنے والا بنائے. امت کے ناطے سے اس کی کیا اہمیت ہے اس بات کی کہ جب ہم اپنی تقدیروں پہ راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ معاملے یا فیصلے جو بظاہر ہمیں اچھے نہیں بھی لگ رہے ہوتے ہیں اس کو مانتے ہیں, تو ایسی امت کو خیر ملتی ہے. آج اسی طرح کی باتیں ہمیں ملیں گی, سورۃ یوسف میں بھی ہیں اور اس سے اگلی سورتوں میں بھی ہے. آئیے آج کا ٹارگٹ شروع کرتے ہیں. نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 13 پارہ. بار کا آغاز اس آیت سے ہے جس کا پچھلے حصے میں ہم نے ذکر کر لیا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ ثابت نہیں کرتا، کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے، ہاں مگر جس پر رب رحم کرے، بے شک رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس جملے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا ہے، کیونکہ اس نے اقرار جرم کر لیا اور انتم التوبہ، ندامت شرمندگی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قول اتنا جامع اور خوبصورت بلیغ ہے کہ یہ حضرت یوسف کا قول معلوم ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس اس کو برائی آسان کر کے دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور جتنی تم اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، باہر جا کر بعد میں تمہیں وہ اتنا ہی ذلیل کرے، تو تمہیں وہ کیسا لگے گا؟ اور اگر اس کو تم بے عزت کرو، ذلیل کرو اور وہ خوش ہو، تو کیسا لگے گا؟ تو صحابہ نے کہا اس سے برا مہمان اور کون ہوگا؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا نفس ہے۔ حقیقت ہے کہ جس طرح بچے کے جتنے لاڈ دیکھیں وہ اتنا ہی بگڑتا ہے اور اتنے نخرے دکھاتا ہے، اسی طرح ہمارا نفس بھی ہے۔ روزہ ہمیں اس چیز میں بہت مدد دیتا ہے کہ ہم سیلف کنٹرول سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ اینیمل انسٹنکٹس ہیں نا، کھانا پینا سونا، یہ ان کو جتنا بڑھائیں گے اتنی بڑھتی جائیں گی، اور جتنی یہ بڑھتی جائیں گی نیکی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ اور ادھر سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ برائی سے بچانے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں سے پتریو کے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو اس پارے کی چند باتیں نوٹ کیجئے جو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ دیں گے آگے جا کر۔ پہلی بات ہے کہ یہ پورے کا پورا پارہ عروج و زوال کے اسباب بیان کرتا ہے۔ سورت یوسف میں آیت 56 میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج زوال اور اوپر نیچے ہونے کی باتیں ملیں گی۔ سورت رات کی آیت نمبر 11 میں قوموں کے عروج کی بات ہے، بہت جامع آیت ہے جو آج ہمارے اس تھیم سے بھی بہت ریلیٹ کرتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر اسی طرح حق اور باطل میں سے حق کا عروج اور باطل کا دبنا، اسی سورت کی آیت 17 میں، یہ بھی بڑی اہم ہے، یہ آج کی آیت تدبر میں انشاءاللہ آپ کو گھر میں بھیجی جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہمیں اس پورے پارے میں جو چیز نظر آئے گی وہ نظر بد کی حقیقت بھی آئے گی۔ پھر اسی طرح سے دعاؤں کا اثر زندگی پہ کیا ہوتا ہے، اور ادھر ہمیں اب آج اس سوال کا جواب ملنے والا ہے اس بارے میں کہ آج امت مسلمہ کو لوگ کیوں عزت نہیں دیتے، اور اگر ہم ان کی عزت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور بہت سارے سوالوں کا جواب، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کی جاب کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ اس بارے کو شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ یہاں تک جو بھی سورت کا تھیم چل چکا اینڈ ہوا، اس کو میں چند جملوں میں سمیٹنا چاہوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی محبت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا، اور بھائیوں کی نفرت کا شکار ہوئے۔ بھائیوں کی نفرت کے شکار کے بعد عزیز مصر کی محبت کا شکار ہوئے، جہاں اس کی بیوی کی لسٹ کا شکار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ایسے لگتا ہے کہ کبھی محبتوں میں آزمائے گئے، کبھی نفرتوں میں آزمائے گئے۔ یہی ایک مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب کبھی آپ کو کوئی اچھی چیز ملے تو بھی آزمائش ہے، جب بھی کوئی بری چیز ہو تو بھی آزمائش ہے۔ لیکن ہر طرح کے حالات میں حضرت یوسف کا جو کردار تھا وہ ان لنراک من المحسنین، یہ چیز بہت بڑی ہے۔ اگر آج میں اور آپ ایک امت کے فرد ہونے کے ناطے سے اپنے کردار کو محسن کے کردار پہ ڈھال لیں، تو پھر عروج ہو یا زوال ہو، ہم حاکم ہو یا محکوم ہو، کبھی بھی کوئی بندہ ہمیں برا نہیں کہہ سکے گا، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ محسن بننے کے لیے آپ کو خیر خواہ بننا پڑتا ہے۔ جتنا آپ لوگوں کے لیے سنسیئر ہوں گے، لوگوں کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اتنا آپ لوگوں کے لیے تڑپیں گے، اور پھر لوگ خود بخود آپ سے اچھی امیدیں لگاتے ہیں۔ ہم نے اس قصے میں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پہ جب اس عورت نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور شوہر کو آتا دیکھ کر ایک دم ہی بات پلٹ گئی، تو شرمانے گھبرانے کی بجائے ہوشیاری کے ساتھ سارا الزام حضرت یوسف کے اوپر ڈال دیا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اس عورت پہ بھی بات کر سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے صرف اپنے دفاع میں کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والا اپنے کردار پر لگے ہوئے دھبے تو مٹاتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو جہاں خاموش رہنا بہتر ہو وہاں خاموش رکھتا ہے۔ پھر ادھر ہمیں ایک چھوٹی سی جھلک ملی اس دور کے ایجپشن کلچر میں، کہ جہاں ان لیڈز کی بیویاں بے وفا عورتیں ہوں جو رہیں کسی اور کے گھر میں، اور ان کے خیالات اور ان کے ارادوں میں کوئی دوسرا مرد آئے، تو یاد رکھیے کہ یہ آج کے دور کا بھی مسئلہ دکھتا ہے، کہ جہاں تھوڑی سی دولت اور عہدے آنے لگتے ہیں वहाँ अपने शोहरों से ज़्यादा दूसरे अच्छे लगने लगते हैं। और जिस सोसाइटी में ये माशरा में बातें चीज़ें होंगी, वहाँ दो चीज़ें होंगी कि औरतों से हया जाती है तो मर्दों से गैरत चली जाती है। औरत की हया और मर्द की गैरत, ये साथ गुंदे हुए होते हैं। एक चीज़ जाएगी तो दूसरी तरफ भी दूसरी चली जाएगी। इसका इजहार हमें अजीज़ मिस्र के इस रवैये से होता है कि जब उसने इतना बड़ा फितना अपने घर में देखा, इसके बावजूद ज्यादा से ज्यादा क्या करता कि यूसुफ को कहीं भेज देता, फिर घर में रखने लग गया। यहाँ वो हदीस भी समझ आती है कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। अगर अजीज़े मिस्र वहां कोई एक्शन ले लेता, कम से कम अपनी बीवी को डांटता या घर में उसको ना छोड़ता या कुछ ना करता, तो उसको इससे बड़ी बदनामी ना सहनी पड़ती। बाज दफा हम छोटी सी चीज को दबा देते हैं, अल्लाह हमें उसकी सजा में फिर उससे ज्यादा बड़ी चीज से गुजार देता है। तो लिहाजा ये चीज पता चलती है कि जब भी कभी को बुराई देखें तो निपटा इवल इन द बट, शुरू में उसको खत्म कर दीजिए। फिर दूसरी बात है कि आज उनके हाथों के काटने और उंगलियों को काटने पे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, काटा जान के काटा, कैसे काटा, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के पूरे मीडिया कल्चर में, फिल्मों में यही कुछ दिखाया जाता है। हैंकरचीफ गिराकर खुद हीरो को माइल करना या हीरोइन की तरफ ले जाना और इस तरह की चीजें लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि हम इस तरह से लोगों की तवज्जो लेंगे। फिर इसमें एक और चीज भी हमें पता चलती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद को पसंद कर लिया इस माहौल में। चंद लम्हे के लिए अपने ऊपर लेके सोचें, आज का कोई ऐसा लड़का या मर्द जिसके पास इस्लाम ना इस तरह पहुंचा जैसे हम यूसुफ के पास पहुंचा, वो तो इस माहौल को क्या कहेगा, वाह क्या ग्लैमर है, क्या मजा है। आज इसी चीज को तो लोग तरसते हैं और बाहर तड़पते हैं और आते हैं कहते हैं पता नहीं यहाँ तो शायद क्या हालात होंगे। लेकिन आप देखते हैं कि जितना ज्यादा ऐसा माहौल बढ़ता है उतना ही नेक लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो पहले इतने उतार चढ़ाव से गुजर के आए थे, पहले माँ बाप से कटे, फिर दीनी माहौल से कटे, फिर मिस्र में दुनियावी तालीम हासिल की, अब उससे भी कट रहे हैं, और सबसे काट के असल में अल्लाह ताला उनको अपना बना रहा था। अब इस अगले हिस्से में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये आप कह लीजिए कि बिल्कुल वही मुकाम आ गया कि जब एक ही इंसान को अल्लाह ताला छांट छांट के तराशता है, जैसे हीरे के कट्स लगते हैं इधर से उधर काट काट के उसको पूरा करते हैं, तो फिर क्या होता है, इंसान की अंदर की स्किल्स नुमादार होती हैं। बस वो हम चाहते हैं हमें फौरन कुछ मिल जाए, लेकिन फौरन नहीं मिलेगा, मिल गया तो अब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लोगों की भीड़ के अंदर तो इखलास आता ही नहीं है। बुरे हालात में वो लोग आपसे झट जाते हैं जो बस ऐसे ही मिले होते हैं, और अल्लाह सब सहारों से बेनियाज करके आपको अपना नियाजमंद बनाता है। और जब एक बंदा पूरी तरह से फोकस्ड होकर अल्लाह के रास्ते में लग जाता है ना, बिलीव में अल्लाह की मदद ऐसी ही है कि जैसे अभी भी कोई सिस्टर इस दरवाजे के बाहर खड़ी जूते उतार रही हो और हमें नहीं पता, और दरवाजा खुले और वो अंदर आ जाए और हमें नहीं पता था वो आएंगी। अल्लाह की मदद इतनी करीब है हमारे। आप अपना कोई भी काम सोचें जो आप चाहते हैं कि हो जाए, कोई रुका हुआ काम, कोई रुकी हुई दुआ, कोई मामला, बस आप खलूस दिल के साथ अल्लाह के रास्ते में लग जाए, आप देखिए कि अल्लाह ताला इतने करीब आपके पास ले आएगा। क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आती है तो इंसान लोगों के पास जाते हैं, लेकिन जब एक इंसान रब के पास जाता है ना, जो अल्लाह से जुड़ा होता है वही जाएगा। ऐसा बंदा जब रब के पास जाता है तो वो फिर दुखी नहीं होता। हमने देखा कि जब कुएं में थे तो तब भी यूसुफ मुस्कुराते ही दिखते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर की खैर को निकाल दे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाने से रोककर पूरे दिल दिमाग के साथ अल्लाह ताला के साथ जुड़ने वाला बना दे। और जब इंसान अल्लाह को ये दिखा देता है कि वाकई मैं सच्चा हूँ तेरे रास्ते में, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। एक हदीस नोट कर लीजिए, आपने बहुत दफा सुनी होगी, लेकिन 7 लोग अर्शे इलाही के साए में होंगे, उसमें से एक शख्स वो होगा कि जिसको किसी ओहदे वाली खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी, लेकिन उसने ये कहकर कि मैं अल्लाह से डरता हूँ उसकी दावत को छुटला दिया। आज हकीकत में बेटों को इसी तरह की तरबियत देने की जरूरत है कि ऐसी बनी ठनी औरतों में बैठना कि जहां किसी मर्द का अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल हो, खुशबू में लिपटी भी, ऐसे वक्त में अगर एक मर्द सिर्फ अल्लाह ताला ही का खौफ रखेगा तो ही बचेगा, वरना दूसरी तरफ मामला बिगड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने जो हमें निजाम दिया वो सारे का सारा हकीकत में तमाम खराबियों और करप्शन और खास तौर पर जिना को मिटाने वाला है। इसके बरक्स आज जो दुनिया में आपको मुझे चीजें दिखती हैं वो इससे ऑपोजिट हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ करके अब हम इस हिस्से को शुरू करेंगे। यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से निकालने जा चुके हैं, आप बेगुनाह साबित करार दिए गए, आपने खुद से बाहर आना पसंद न किया। नबी सल्लम ने फरमाया कि अगर यूसुफ की जगह मैं होता तो बादशाह के उस कासिद के साथ फौरन निकल के आ जाता। 7 साल की कैद कोई आसान नहीं है, और वो भी बेगुनाह कैद। लेकिन यूसुफ ने कहा, नहीं सॉरी, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाऊंगा? जब तक कि मेरे ऊपर लगा हुआ इल्जाम न धुले। क्यों यूसुफ अलैहि सलाम ने ये जिद की? क्योंकि अल्लाह ने यूसुफ से बाद में अपने दीन का काम लेना था, और दीनदारों के ऊपर जब धब्बे लग चुके होते हैं तो लोग फिर उनकी बातों को उछाल कर दीन को बुरा करते हैं। तो लिहाजा अगर आप भी कभी अल्लाह का कोई काम करना चाहते हैं तो अपने दामन को हमेशा पाक रखें। लोग बातें फिर भी करेंगे, लेकिन आप कम अज कम अपने दामन को हर तरह की चीज से पाक रखें कि जिसमें कोई बात कर सके। बादशाह सलामत को समझ आ चुकी थी कि ये शख्स बेगुनाह है। जब औरतों ने भरमला सबके बीच में ऐलान कर लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी इज्जत के साथ बादशाह के पास लाए गए। अब इमेजिन कीजिए, एक शख्स जेल से निकलता है। अमूमन लोग जेल से निकलते हैं तो उनके नाम के साथ एक ठप्पा लग चुका होता है, उनका कैरियर बिगड़ चुका, बैड करेक्टर, किरार दिए गए क्रेडिट उनका लो हो गया। लेकिन यूसुफ के साथ क्या हुआ जब वो जेल से निकले? आयत नंबर 54, वकाल अल मलिकू, बादशाह ने कहा, यानी बादशाह वही है जिसने ये ख्वाब देखा था, तो क्या कहने लगा? बादशाह ने कहा, इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको अपने लिए मखसूस कर दूं। इसको हाईलाइट कर लें। आप कहते हैं हाय, अगर जेल में चले गए तो कैरियर खराब हो जाएगा। यूसुफ का तो कैरियर बना ही जेब में, क्योंकि सच्चे थे, हक पे थे। बादशाह ने उनको कहा कि वो अब मेरे पर्सनल सेक्रेटरी होंगे, मेरे खास लोगों में से होंगे, क्योंकि मैंने उनको जांच लिया। तो सच्चे मोमिन को अगर कभी जेल की तन्हाइयों में भी डाल दे कोई और उस पर बदनामी के छींटे पड़ जाए, सारी दुनिया उसको बुरा भला कहने लगे, लेकिन याद रखिएगा कि सच्चाई अपना आप मनवा लेती है। तो लिहाजा उस बादशाह ने उनको अपना खास बना लिया। और जब यूसुफ ने इनसे गुफ्तगू की तो इसने कहा, आप हमारे यहाँ कद्र मंजिलत रखते हैं। यानी अभी तो सिर्फ यूसुफ के बारे में सुना था तो कहा कि वो मेरे लिए खास बंदा होगा, लेकिन जब कलाम किया, उनकी बात सुनी, उनकी बातों का जो वजन और जो जोश था उसको देखकर तो फौरन फैसला कर लिया कि नहीं, सिर्फ खास सेक्रेटरी नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं इनको अपना वजीर बना लूंगा। तो यहां से पता चलता है कि मुसलमान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहां मैं आप सबकी तवज्जो दिलाऊंगी फिर इसी मौजू पर जो हमारी सूरत को इस साल पढ़ने का थीम है। यूसुफ अलैहि सलाम एक मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो बादशाह और वो हुकूमत एक नॉन मुस्लिम हुकूमत को रिप्रेजेंट करती है। यूसुफ में चूके खूबी थी, बादशाह ने खुद उनको ओहदा पेश किया, अपने करीब रखा। अगर आज हम मुसलमानों में खूबी होगी और जिनमें है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको गैर मुस्लिम स्कूल्स और उनको अदालतें और यूनिवर्सिटीज खुद बुला रही हैं। आज मैं और आप इस कॉम्प्लेक्स में जाने की बजाय कि चूंकि हमारे बच्चे मुस्लिम हैं इसलिए उनको जॉब्स नहीं मिलती, चूंकि हमारी बच्चियां हिजाब और निकाब करती हैं इसलिए जॉब नहीं मिलती, इस कॉम्प्लेक्स को खुरच दीजिए आप, बल्कि उनको उसमें और पक्का करने के साथ साथ उनको के मेहनत और करो। तुम्हारे नंबर ही इतने ज्यादा आ जाए कि कोई काट ही ना सके, गलती कोई हो ही ना तुम्हारे पेपर में कि जिसकी वजह से कोई पीछे करे। तो यहां आपके मेरे लिए एक असूल की बात समझ आ गई कि असल में किरदार जीतता है। यूसुफ ने वाकई एक मुस्लिम किरदार बना के दिखाया, बादशाह ने उनको अपनी कैबिनेट में ले लिया। आज बहुत बड़ी बात समझी जाती है कि कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मुल्क की कैबिनेट में चला जाए, और कैबिनेट में भी सबसे बड़ी कैबिनेट का एक हिस्सा जिसको आप वजीर खजाना कहेंगे, जिसमें मनी अफेयर्स चलते हैं, जो किसी मुल्क की बैकबोन होती है। तो आप देखिए कि आज मैं और आप ये रोना रोते हैं कि दूसरे लोग हम मुसलमानों की इकोनॉमी पे छा गए और हमारा माल खा गए और दिस एंड दैट। यहाँ एक गैर मुस्लिम बादशाह अपनी सारी दौलत, चाबियां, कुंजियां यूसुफ को दे रहा है। क्यों? उसको पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जानते हैं और दुख के जो दिन आने वाले हैं उसको दूर कर सकेंगे। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी करेंसीज की वजह से परेशान हैं, और आपने देखा होगा कि रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं और कई मुल्क पीछे गए ऊपर गए। अगर आज हम मुसलमान अपना इस्लामिक इकोनॉमिक का सेटअप बना चुके होते हैं और वो इतना सक्सेसफुल है, मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये कहूंगी, अगर हमने दुनिया में किसी छोटे से हिस्से में भी उसको लगा के लोगों को दिखाया होता तो आज वो सब बड़े बड़े मुल्क जिनकी इकोनॉमीज डूबी वो हमारे से रिजू करते कि भेजिए अपने एक्सपर्ट्स इधर और हमारे इस खसारे को निकालें। लेकिन चूंकि हमने खुद अपने जहाज चलाने नहीं शुरू किए दीन के, तो दूसरे हमें कहाँ देंगे। और यहाँ एक और जुमला बादशाह का नोट कीजिएगा, फरमाया, और आपकी अमानत पर हमें पूरा भरोसा। ये है सरकार, आज मुसलमानों को अमीन बनना होगा, अपनी जॉब के आवर्स को पूरा करना, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना, झूठ नहीं बोलना, गलत चीजों को नहीं लेना। इस तरह से आप देखेंगे कि जब हम होंगे तो लोग हम पर भी ट्रस्ट करेंगे। उनको जब ये खौफ होगा कि ये सैंपल तो कुछ और दिखाते हैं अपने मुल्कों से और चीज जब आती है तो वो कुछ और है, कब अगली दफा आपके साथ कुछ। यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा, मुल्क खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म वाला भी हूँ, ये क्या बात है। यूसुफ ने खजाने पे नजर रखी हुई थी? नहीं, यूसुफ को उस ख्वाब की वजह से पता था कि इस मुल्क पे मुश्किल दिन आ रहे हैं। चूंकि मुहसिन थे और मुहसिन लोगों की मदद करना चाहता है, तो यूसुफ ने कहा कि मेरे पास जेल में, यहाँ से पता चलता है कि जहां जरूरत हो और आपके पास कोई स्किल हो तो आपको पेश कीजिए। ये हिकमत है। हम हिकमत की भी तो बात कर रहे हैं ना। हिकमत क्या है कि अपनी स्किल्स को पहचाने। बस दफा कुछ लोग सारी जिंदगी वो काम करते रहते हैं जिसकी स्किल नहीं होती और अपनी जो स्किल्स है उसको दबा देते हैं। बस आप देखिए कि कुछ लोगों को शौक होता है कि वो हर काम करें। मिसाल देती हूँ कि कोई भी दीन के नाम पे काम शुरू होता है, अच्छा फलां की मस्जिद है, मस्जिद भी बनाएंगे, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और वो ये करते, जो जो कोई दूसरा करता है वो उसकी डिट्टो कॉपी बनते हैं। क्या हुआ? एक और चीज वैसी बन गई जो पहले थी। हालांकि अगर वो अपनी को खास स्किल देते कि जो पहली जगह पे मौजूद नहीं वो लोगों को देते तो वो चीज ज्यादा फायदा होती। तो हमेशा याद रखिए कि दूसरों के नक्शे कदम पे चलने की बजाय खुद को रोल मॉडल बनाएं और अल्लाह ताला फिर आपसे भी खिदमत लेगा। और इस तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की। ये जो लफ्ज़ है ना, इस तरह, इसको हाईलाइट कर ले। ये जो कजालिक का लफ्ज़ है, असल में ये यूसुफ की पूरी जिंदगी के दुखों और गमों की वजह बता दी। बस जब हमारी जिंदगी में इसी तरह के ऊपर नीच की चीजें आती हैं तो वो कजालिका होती है। कभी आपको जिंदगी में कोई तकलीफ आए, खास तौर पे अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के बाद, तो फिर अपने आप को फौरन तैयार कर लें कि इसके पीछे कोई बात है। क्या यूसुफ कभी खुद से बादशाह के पास आके कहते मुझे वजीरे खजाना बना दो तो वो बनते? कनान में एक बच्चा पला हुआ गाँव का देहाती, बिल्कुल छोटी सी सोच का मालिक, वो तो कभी बादशाहों के दरबार के मैनर्स भी ना जानता। अल्लाह ने अजीज़े मिस्र के घर में रखे, और कहते कि अजीज़े मिस्र भी वजीरे खजाना था। बादशाहों के माल कैसे रखे जाते उसको भी यूसुफ सीख चुके थे। उधर से बाप से दीन सीखा, इधर आके दुनिया सीखी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अब बिल्कुल एनरिच्ड हो चुके थे, स्किल्ड पर्सन थे, दीन और दुनिया का बेस्ट मजमुआ बन चुके थे। अल्लाह ताला कहते जब ये सारी प्रेपरेशन हो गई, हमने यूसुफ के लिए मिस्र का इक्तदार हमवार कर दिए। वो मुख्तार थे कि इसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। वल्लाही आज भी ग्लोब पर यही जुमला लिखा हुआ है मुअत्ते मुस्लिमा के लिए, शर्त है कि हफीज, अमीन, स्किल्ड, ये सब कर लीजिए, फिर कभी आपको मुझे किसी दूसरे को अपनी नाकामियों की वजह कहने की नौबत नहीं आएगी। नसीबु बिरहमति नामन नशाओ वला नुजी अजरल मुहसिनीन। हम अपनी रहमत में से जिसको चाहते हैं नवाजते रहते हैं, और नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता, और आखरत का अजर इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के लिए काम करते रहे। क्या पता चला कि बंदे मोमिन को दुनिया में भी मौके मिलते हैं खैर के, और आखरत का अजर तो अल्लाह ताला ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और दौर है। कई साल की जुदाई के बाद अब वो भाई जिन्होंने उनको कुएं में फेंका था हालात का शिकार हुए। कनान में भी कहत आया, बादशाह का ख्वाब सच्चा हुआ। यहाँ से ये बात भी नोट कीजिए कि अल्लाह नॉन मुस्लिम का ख्वाब भी सच कर सकता है। हम कहते हैं मेरे ख्वाब सच्चे हैं तो मैं बड़ी नेक हूँ, या मेरी तबीयत ठीक हो गई तो सब ठीक है। नहीं, बादशाह नॉन मुस्लिम तो उसका ख्वाब सच हो रहा है। कहत आया, मिस्र में भी आया, बाकी जगहों पर भी आया। चूंकि बाकी लोग जहनी तौर पर तैयार नहीं थे तो वहां थोड़े ही दिनों में खाने पीने की कमी हो गई, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतने खूबसूरत तरीके से मनी मैनेजमेंट की कि जो फसल उगती थोड़ा सा जरूरत का उसको खिलाने के लिए निकाल देते अवाम को, बाकी उसके खुशियों के साथ ही प्रिजर्व कर देते। नतीजा क्या हुआ कि जब कहत आ गया तो मिस्र के अंदर बहुत सारा गल्ला था, ना सिर्फ ये कि अपने लिए बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। अब यहाँ नोट कीजिए, ऐसे वक्तों में अमूमन दुनिया में क्या होता है, लोग अपनी मर्जी की कीमतें लेते हैं ना, कि चूंकि अब आपको जरूरत है हम लेंगे, लेकिन यूसुफ जैसे हुक्मरान अगर दुनिया को मिल जाए तो वो लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाने की बजाय, उनका खून निचोड़ने की बजाय, कि अब तुम अपना और भी सब कुछ हमें दे के कपड़े भी बेच के ही जाओ तो फिर हम तुम्हें एड भेजेंगे, यूसुफ ने फ्री कोटा दे दिया, 1% पर हेड, जिसको आप कहते हैं कि जो आए एक ऊंट पे जितना सामान लादा जाए उतना अनाज उसको देते, और दैट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उम्मत मुस्लिमा का किरदार था, वल्लाह ही था। हजरत उमर का दौर पढ़ के देख लीजिए, खैरात लेने वाला कोई नहीं था, लोग जकात का माल ले लेकर फिरते थे कि हम किसको दें। इतनी दुनिया में फरावानी थी। आप जरूर पढ़िए हजरत उमर पर एक बड़ी प्यारी बुक है अल फारूक के नाम पे, पढ़ के देखिए कि जिससे पता चलता है कि असल अमीर मुल्क कौन से होते हैं। सारा वेस्टर्न कल्चर का और वेस्टर्न कंट्रीज का जो हवा है ना, वो हमारे जहनों से निकल जाएगा अगर हमने चंद लोगों के साथ बैठकर दौरे फारूकी पढ़ा। और ये मेरे प्लान में इंशाल्लाह हमने रमजान के बाद कहीं ना कहीं इसको सेट करके तो खुलफ़ाए राशिदीन को पढ़ना है कि किस तरह से वो लोग थे, तभी तो हम अपने किरदार को पहचानेंगे और उन्होंने कैसे खिलाफत रास्ता कायम की। कब से प्लान किया हुआ कि ये किसी मौके पे हमने एक शॉर्ट कोर्स करना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने असल से जोड़ दे ताकि हमारा भी तो सर उठे। हम तो सर झुका झुका के जीते जीते गिरे। आप देखिए, अल्लाह ने हमारे सर पे उम्मत वसत होने का ताज रखा था, और सर झुकाओ और जो सर गिरा दे तो ताज भी गिरेगा ना। आज हमने सर झुकाए ना तो हमारे ताज भी गिर गए। जिस दिन सर उठा के जीना सीखेंगे उस दिन तकदीर बदलेगी। और सर वही उठाता है जिसके अंदर कोई स्किल होती है। शर्मिंदा और दबे दबे लोग कभी भी सर उठा के नहीं काम कर सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सब के लिए जब किया, यही खबर फैल गई दुनिया में इर्द गिर्द जो भी लोग थे कि मिस्र में एक नरम दिल वाला बादशाह है और वो लोगों को अनाज देता है। ये खबर जब भाइयों तक पहुंची, अब वो देखिए यूसुफ के दरबार में खड़े हैं और इनकी दो तीन मुख्तलिफ हाजरियां इसको पढ़ते जाते हैं, और फिर अगर एंड पे सारे को पाइल अप कर सके तो इंशाल्लाह कर लेंगे। फरमाया वजाए इख्वत यूसुफ, यूसुफ के भाई मिस्र आए और इनके यहाँ हाजिर हुए, इसने इनको पहचान लिया अगर वो इससे नाश्ना थे। ये क्यों हुआ? यूसुफ ने इनको क्यों पहचान लिया? क्योंकि वो बहुत सारे थे, मिस्र से आए, कई बातें मौजूद थी जिससे पता चलता। और दूसरी बात है, मोमिन की फरासत बहुत होती है, वो लोगों को एक नजर देख ले तो वो भूलता नहीं है, वो पहचान जाता है। इसके वक्त वो क्यों ना पहचान सके? पहली बात है, वो तो अपने जोम में यूसुफ को मार चुके और वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस यूसुफ को हमने कुएं में डाला था वो हमें तख्त पे बैठा हुआ बादशाह बना हुआ मिलेगा। बहुत दफा ऐसे ही होता है, लोग आपके साथ दुश्मनी करते हैं, आपके मुखालिफ होते हैं, वो कहते हैं अब आपकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आएगी। वो तो सोचते हैं आप कहीं बैठे अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे होंगे, रो धो रहे होंगे और पिछली जिंदगी के महरूमियों पे आंसू बहाएंगे, लेकिन अल्लाह आपको इज्जत देने लगे तो कौन छोड़े आपको। यही हुआ, वो ना पहचान सके, यूसुफ पहचान गए। मगर जब इसने इनका सामान तैयार करवाया तो चलते वक्त इनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। बातों ही बातों में उनसे कहानी सुन ली। उन्होंने कहा, एक और भाई है बिन्यामीन, वो सौतेला है, वो घर में, कहा उसको लाना, क्योंकि पर हट देते थे जो आएगा उसको मिलेगा। देखते नहीं हो मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूं और मैं कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूं। यहां से देखिए, मुसलमान में खूबियां होंगी तो उसी को तो पेश करेगा। किसी गैर मुस्लिम को आप अपने मुल्क में बुलाएं या आप किसी मुसलमान के साथ मामला करें, आपको अपने इखलाक के साथ उसको बताना चाहिए कि हम कितने अच्छे लोग हैं और तुम हमारे पास आकर लेते ही हो, हम तुमसे मांगते कुछ नहीं है। जिस दिन मुसलमान गैरों की मदद को रिजेक्ट करके थैंक यू विद थैंक्स के नोट्स के साथ उनको वापस भेजेंगे, उस दिन आप देखिए हमारी इज्जत शुरू हो जाएगी। हमेशा नीचे वाला हाथ ऊपर वाले हाथ से दबाई होता है। एक दफा मुसलमान जुरत कर ले, हम आधा पेट खा लेंगे, हम अपना जेवर बेच देंगे, हम सारे मुसलमान अपने घर बेचकर मुसलमानों को देंगे, लेकिन हमने गैरों की मदद नहीं लेनी। जब तक मदद का कासा नहीं तोड़ेंगे तब तक इज्जत का ताज हमारे सरों पे नहीं आएगा, क्योंकि जो आपको देगा वो आपसे अपनी मर्जी के काम कराएगा। ये तो बात हम सब अपनी मासियों से भी सीख सकते हैं, बातें भी सुनती हैं, पैसे भी लेती हैं थोड़े बहुत, और साथ हमारे काम भी करती हैं। यूसुफ के अंदर इतना जुरत और इतना एतमाद क्यों था? कहा, देखो मैं देता हूं ना, पूरा देता हूं, डंडी नहीं मारता और मेहमान नवाज भी हूं, लिहाजा तुम लेकर आना, और देखो अगर तुम उसको नहीं लाओगे मेरे पास तो मेरे पास ना पटकना। कितने जुरत के से शर्तें मनवा रहे हैं। तो आज हम मुसलमान भी ये कर सकते हैं, शर्त यह कि हम पहले उससे अपनी कमियों को मेकअप कर लें। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब इसे भेजने पर राजी हो जाएं, और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों के गल्ले की बस जो माल दिया जाए वो चुपके से इनके सामान में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान ले जाएंगे या इस फ्याजी पर एहसान मंद होंगे, और अजब नहीं कि फिर पलटे। एहसान करना चाहते थे ताकि वो वापस आए, और वैसे भी जब चीज किसी की रह जाती है तो उसको देने तो आता है। इससे हिकमत सीखिए। देखिए, मुझे जो बात दोबारा इस सूरत को पढ़ने और पढ़ाने से समझ आई वो ये है कि जो शख्स अल्लाह के नाखुशगवार फैसलों को खुशी से मान ले उसको हिकमत मिलती है। जिन मौकों पे जिंदगी में कुछ सदमा पहुंचा, आपको दुख पहुंचा, किसी ने आपको डिग्रेड किया, बेइज्जती की, घर छूट गया, आपके बच्चे ने आपको सता दिया, आपके शौहर ने आपको डांट दिया, अगर उस वक्त आप रोने धोने पिटी फीलिंग की बजाय कहें अल्हम्दुलिल्लाह रदी तो बिल्ला रब्बन, सीने से लगाइए अल्लाह के दिए हुए दुखों और गमों को, अल्लाह आपको हिकमत दे देगा, फिर फहम मिलता है। जो अपने गमों में जीते उनको हिकमत नहीं मिलती, जो अपने गमों से बेनियाज होकर अल्लाह के दीन के गम में जीते हैं अल्लाह उनको हिकमत देता है। यही हुआ, यूसुफ को ये बात क्यों सूझी? क्योंकि उनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ था। कहने लगे, चले जाओ, बस ठीक है, हो गई बात। फिर क्या हुआ? ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे और इस फ्याजी पर एहसान मंद होंगे, और अजब नहीं कि फिर पलटे। जब वो अपने बाप के पास गए, अब बेटे वापस जाते हैं, तो अब कहा, अब्बा जान आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिए गए। यहां से आपको इनका नेगेटिव रवैया दिखेगा, گو کہ اللہ نے بعد میں ان سب کو معاف بھی کر دیا تھا، نبوت بھی مل گئی تھی، لیکن یاد رکھیے کہ اگر یوسف کے اور ان کے کردار میں فرق دیکھے، زمین آسمان کا فرق ہے. یوسف کا رویہ ہر جگہ باد یا بتی یا بتی یا برادران اپنے بھائیوں کو کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ باپ کو یہ کہنے کے بجائے کہ اتنا کچھ مل گیا، گھر جاتے ہی شور مچا دیا کہ جی ہم کو آئندہ غلہ نہیں ملے گا. تو یاد رکھیے وہ ایمٹی گلاس، آدھا گلاس خالی ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے. زندگی کو پہچانیں، اپنی سوچ کو سیدھا کریں. اگر زندگی میں آپ کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے نا، کل آپ کو ساس اچھی نہیں ملی، آج آپ کی بہو اچھی نہیں، تو آپ اس میں سے ذرا لفظ آپ پہ غور کیجئے کہ کہیں آپ کی پرسنالٹی میں ہی تو نیگیٹیزم تو نہیں، کہیں آپ ہی لوگوں کے ایپ چننے والی تو نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے آ کے باپ کو پہلے بری بات بتائی اور پھر بعد میں اچھی بات ہو بعد میں پتہ چلے گی. لہٰذا کہنے لگے بس آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یہی جملے تب بھی بولے تھے جب یوسف کو لے کے جا رہے تھے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کیا پتہ چلا کہ گناہ انسان کی جان نہیں چھوڑتا چاہے 20 سال بھی گزر گئے ہوں، 40 سال کیوں نہ گزر گئے ہوں. کب سے انہوں نے باپ کا دل توڑا ہوا تھا، لیکن باپ نے اس بات کو دل میں رکھا ہوا تھا. خیر ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہم کو واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر کر سامان اور بھی لائیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ کو وعدہ نہ دو کہ اسے تم میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے. ہاں مگر یہ کہ اگر تم گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے ان کو اپنے اپنے پیمان دیے تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. پھر انہوں نے کہا میرے بچوں مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. اور واقعہ بھی یہی ہوا، جب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کام آ سکی. ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی بھی تعلیم سے صاحب علم تھے، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. بہت سارے سبق ہیں اس میں ہمارے لیے. پہلی بات آپ دیکھیے کہ مومن ایک سوراخ سے چونکہ دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کو ان کے ساتھ بھیجنے میں جلدی نہیں کی. دوسری بات آپ دیکھیے کہ انہوں نے پھر اس دفعہ اللہ کو بیچ میں رکھا. باپ جب یوسف کو بھیج رہے تھے تو یہ جملے نہیں کہے گئے تھے. تو جب آپ اللہ کی امان میں کسی چیز کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نقصان سے بھی بچا دیتا ہے. پھر اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نظر بد لگتی ہے. بیٹوں کو ایک دروازے سے گزرنے سے کیوں روکا؟ کیونکہ نظر بد لگ سکتی ہے. اتنے گھبرو قسم کے دیہات کے پلے ہوئے بھائی، اور بھائی تو یوسف کے ہی تھے نا کچھ تو رنگ روپ ہوگا نا، تو نظر بد سے بچنے ہیں. اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. اور نظر بد کی حقیقت ہے، حقیقت میں جب نظر لگتی ہے تو پتھر پھاڑ لگتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو بستر پہ یا قبر پہ پہنچا دیتی ہے. اس پہ الحمدللہ ابھی ہمارا جو ایک سیمینار ہوا تھا چند مہینے پہلے جادو اور اس کے بارے میں، اس پہ ایک پورا ٹاپک ہم نے نظر بد کا کیا تھا، کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. اگر آپ چاہیں تو اس کا لنک آج آپ کو بھیج دیں گے، آپ سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور بہت زیادہ ڈسپلے بھی نہیں کرنا چاہیے نظر بد سے بچنے کے لیے. جب ہم اپنی چیزوں کو بغیر صبح شام کی دعائیں پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، خوب سجا سنوار کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھنے والوں نے شاید ہی کبھی ماشاء اللہ کہا یا کبھی دعا دی ہو کہ بارک اللہ یا اللہ مبارک لہم، وہ ایک دم ہاں ہوئی کرتے ہیں، ہائے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہائے کتنے پیارے لگ رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک مینر ہے. آج ہم مسلمان اس مینر کو بھول گئے. کبھی کوئی چیز اچھی لگے آپ کو، اپنے میں، اپنے بچوں میں، دوستوں میں، بہنوں میں، کسی کو دیکھا آپ کو اچھا لگا، فوراً بولیے ماشاء اللہ، پھر نظر نہیں لگے گی. آپ کیا کہتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنا بچہ حسین لگ رہا ہے. پتہ چلا گھر گئے ساری رات بچہ روتا رہا، پتہ چلا اس کی نظر لگی، آپ کی اپنی لگ جاتی ہے. تو ہمیشہ ان چیزوں کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر دوسری بات ہے کہ اصلاح کی خاطر پچھلی غلطی یاد دلائی جا سکتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو شرمندہ نہیں کیا لیکن ان کی اصلاح کی کوشش کی. फिर इसी तरह से एक और चीज है, और वो क्या है कि उन्होंने कोशिश पूरी कर ली लेकिन अल्लाह की मर्जी चली, तकदीर बमकाबला तदबीर। हम जो कुछ कर ले, जो कुछ चाहें, होगा वही जो के अल्लाह ताला ने चाहा। तो लिहाजा यही हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ये पहुंच के इजारत करेगा।